Giant Radio Podcast.
अभागा बुनकर। ये कहानी पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति भाग पर आधारित है। एक बार की बात है, एक नगर में सोमिलिक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अपने काम में माहिर था, पर नगर में सबसे रंगीन कपड़े बनाकर भी उसका मुश्किल से ही गुजर बसर होता था। अन्य जुलाहे सादे कपड़े बनाकर भी देखते ही देखते धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमिलिक ने अपनी पत्नी से कहा, मामूली कपड़ा बनाने वाले जुलाहों ने भी कितना धन कमा लिया है और कहां से कहां पहुंच गए हैं। मैं इतने सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी आज तक निर्धन ही हूं। लगता है ये नगर मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः मुझे विदेश जाकर धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। सोमिलिक की पत्नी ने कहा,
विदेश में धन कमाना बहुत कठिन होता है। अगर भाग्य में धन मिलना होगा तो स्वदेश में ही मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना हो तो हाथ आया सब कुछ भी लूट जाता है। अतः यहीं रहकर काम करते रहिए, भाग्य में लिखा होगा तो यहीं धन की प्राप्ति हो जाएगी।
सोमिलिक ये सुनकर बोला,
भाग्य की बातें कमजोर लोग करते हैं जो मेहनत से डरते हो। लक्ष्मी हमेशा परिश्रम से प्राप्त होती है। मैं भाग्य की राह देखने की जगह विदेश जाकर जतन करूंगा और धन कमा कर दिखाऊंगा।
ये कहकर सोमिलिक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपनी मेहनत से 300 सोने की मोहरें लेकर वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था तो आधे रास्ते में ही दिन ढल गया और शाम हो चली। आसपास कोई घर नहीं था। उसने एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते उसे एक स्वप्न आया जिसमें 2 भयंकर दिखने वाले पुरुष आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा,
ए पुरुष, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि सोमिलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तुमने इसे 300 मोहरें क्यों दी?
दूसरा बोला,
हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक मेहनत करने वाले को एक बार उसका फल देता ही हूं, पर फल को उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तुम्हारे हाथ में है।
स्वप्न के बाद सोमिलिक की नींद खुली तो देखा कि मोहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से इकट्ठे किए हुए धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलिक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि वापस जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचकर वो फिर से वर्धमानपुर वापस चला गया। इस बार उसने दिन रात घोर परिश्रम करके वर्ष भर में ही 500 मोहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वो फिर से घर की ओर चल पड़ा। इस बार फिर आधे रास्ते में ही रात हो गई, पर इस बार वो सोने के लिए ठहरा नहीं और चलता ही रहा। पर चलते चलते उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही,
हे पौरुष, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सोमिलिक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तुमने 500 मोहरें क्यों दी?
पौरुष ने वही उत्तर दिया,
हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही, इससे आगे तुम्हारे अधीन है कि उसके पास फल रहने दे या छीन ले।
इस बातचीत के बाद सोमिलिक ने जब अपनी मोहरों की गठरी देखी तो वो मोहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ रह जाने से सोमिलिक का मन बहुत दुखी हुआ उसने सोचा कि इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। यही सोचकर उसने पास के एक वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधी और लटकने को तैयार हो गया। पर तभी एक आकाशवाणी हुई,
सो मिलिक, ये गलती मत करो, मैंने ही तुम्हारा धन चुराया है। तुम्हारे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन नहीं लिखा, व्यथा के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत करो, घर जाकर सुख से रहो। तुम्हारे साहस से मैं प्रसन्न हूं, तुम जो चाहे एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा।
सोमलिक के मन में तो बस धन की ही चाह थी, तो उसने फिर कहा,
मुझे वरदान में बहुत सारा धन दे दो।
अदृश्य देवता ने फिर कहा,
धन का तुम्हें कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करोगे?
सोमिलिक तो धन को तरस रहा था। वो बोला,
भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग के भी धन की बड़ी कीमत है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन हो।
सोमिलिक की बात सुनने के बाद देवता ने कहा,
अगर तुम्हारी धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो तुम फिर से वर्धमानपुर चले जाओ। वहां दो बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त धन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तुम वापसी में किसी एक का वरदान मांगना। यदि तुम उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहोगे तो तुम्हें गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च करने के लिए चाहोगे तो उपभुक्त धन दे दूंगा।
ये कहकर देवता लुप्त हो गए। सोमलिक उनके आदेश के अनुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर आए अतिथि का किसी ने सत्कार तक नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा। पर सोमलिक संकल्प का पक्का था और सबकी मर्जी के खिलाफ वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वो वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था,
हे पौरुष, तुमने गुप्त धन को भाग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमलिक को भी रोटी दे दी?
पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तुम्हारे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमलिक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां के घर वालों ने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के लिए सुंदर बिस्तर दिए। सोते सोते इसने फिर से उन्हीं दोनों देवों को सुना। एक कह रहा था,
ए पौरुष, इसने सोमलिक का सत्कार करते हुए बहुत धन खर्च कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी?
दूसरे ने कहा,
हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तुम्हारे अधीन है।
सुबह होने पर सोमलिक ने देखा, राजदरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लेकर उपभुक्त धन को दे रहा था। ये देखकर सोमलिक ने विचार किया, कि ये संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या अच्छे कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वो धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। पंचतंत्र की हर कहानी जीवन को सही तरह से जीने का पाठ पढ़ाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुप्त धन से उपभुक्त धन अच्छा होता है, जो किसी सिद्ध कार्य में काम आ जाए।